नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज। शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं शिवं शुद्ध बुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न गंगं न संगं न स्वेक्षा न कायम् चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोकः न कोपं न मानं न माया न लोभम् चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न हस्तौ पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न जन्मं न मृत्यु न मोहं न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यं न तंद्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम् ऋषिकेश विद्वत् कर्मादि जालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादि गात्रम् चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न क्रोधं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहः न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न चन्द्रा चिदानंद रूपं नमो वीतरागम् नाद्यं न मध्यं न गन्तं न चान्यं न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावः देहवल्मीकमध्याने निष्काश्यन्ते विविधविषमा व्याधया काद्रवीया प्रागेवेह विदिव भावना देश्यता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्ये त्वयेदम् ध्यानद्वारम् मम रुचिकरम् स्वान्तगेहं प्रविष्टः तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धु त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नम् कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नैकथा पारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिमा द्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापा पादन्यासा गपि च पुनतो यात्रया तेऽत्र लोकीं हेमा भासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मः सर्वाङ्गेन प्रशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर् यन्नमामच्युपैति पश्यन्तं त्वत् वचनममृतम् भक्तिपात्रापिवन्तम् कर्मारण्यात् पुरुषमसमा नन्दधाम प्रविष्टम् त्वां दुर्वार मर्मदहरम् त्वत्प्रसादैकभूमिम् क्रूराकारा कथमिव रुजा कञ्चुका निर्लुथन्ति पाषाणात्मा सदितरसमः केवलं रत्नमूर्ति मानसम्भो भवति च परः तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्यासक्तिर् यदि न भवतः तस्य तत्शक्ति हेतु रज्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्यः पुंसाम् निर्वधिरुजा भूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलम् यस्य तु त्वं प्रविष्टः तस्यासक्तः कहिय भुवने देवलोकोपकार। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम् जातं यस्य मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनस्ति त्वं सर्वेशः प्रकपयति चा स्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यम् तदिहि विषये देवयेव प्रमाणम् प्रापद्यैवं तवनुतिपदैर् जीवकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम् कः सन्देहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वम् जलपञ्जाप्यैर् मणिविरमलैः तन्नमस्कारचक्रम्। पूरे एक ही भाव स्तोत्र का सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, पर इसमें तो भक्ति के चरम पर जैसे पहुंच गए हों वैसी स्थिति है। क्या कह रहे हैं वादिराज महाराज भगवान से कि हे भगवन, जानासि त्वं मम भव भवे यच्च याद्रक्ष दुःखम्। आपसे क्या छिपा हुआ है, आप सब जानते हैं कि मैंने भव भव में जैसे और जितने दुख पाए हैं, मैं उनको आपसे क्या कहूँ, आप तो स्वयं ही जानते हैं। और इतना ही नहीं, जातम यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनस्ति, अगर उन दुखों को मैं आपके सामने कहूँ क्या, स्मरण भी करूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि छाती में किसी ने बर्छी चुभो दी। इसलिए मैं कह भी नहीं रहा, ना उनका स्मरण कर रहा, पर मुझे ये विश्वास है कि आप मेरे दुखों को भली प्रकार से जानते हैं, और संसार में कोई नहीं जानता मेरे सिवाय, मेरे दुखों को आप जानते हैं। ये भक्ति का चरम है कहना चाहिए कि हे भगवान, मैंने भाव भाव में जितने और जैसे दुख पाए हैं वो सब आप जानते हैं, और मैं उनका स्मरण भी करूं तो मुझे छाती में वर्षी जैसी चुभ जाती अर्थात और पीड़ा होती है। ये तो रही हमारी और हमारे दुखों की चर्चा, लेकिन आपके बारे में हमने सुना है कि तुम सर्वेशा, आप सबके ईश्वर हो, और ईश्वर तो बहुत अपने को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सकृप इति चा, लेकिन आप अत्यंत दयालु हो। अब दो चीजें हो गई, आप सबके ईश्वर हो, जो चाहो वो कर सकते, और आप अत्यंत दयालु हो, ये आपकी दो विशेषताएं हैं, और आप हमारे दुखों को जानते हो। अब ऐसी स्थिति में, और फिर इतने ही नहीं, स्वाम उपेतोस्मि भक्त्या, और भक्ति पूर्वक मैं आपके चरणों में आ गया हूं, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। अब ऐसी स्थिति में मैं अपने दुखड़ा आपसे रोऊं या कि मेरा दुख दूर करो ऐसी प्रार्थना करूं, ये खोटी बात है। इसमें तो आपके प्रति मेरा अविश्वास ही झलकेगा। तो यत कर्तव्यम तदी विषय देव एव प्रमाणम, हमारे बारे में, हमारे दुखों के बारे में आपको जो करने हो तो वो करो, हमें कुछ नहीं कहना। आप ही हमारे लिए प्रामाणिक हो। हम अपनी तरफ से ने अपने दुख कह रहे, ने अपने दुखों को दूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रामाणिक हो, आपके चरणों में हम आ गए, अब आपको जो करना हो वैसा करो। इतना भगवान कुछ करेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। भगवान के ऊपर छोड़ दिया हो ऐसा नहीं। यहां पर भक्ति का चरम है कि हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आप ही हमारे लिए प्रामाणिक हैं, हमें संसार में और किसी की शरण नहीं है। इस तरह अगर हम अपने आप को भगवान के सम्मुख समर्पित करते हैं तो वो हमारा जो समर्पण और श्रद्धा है वो हमारे कर्मों को काटने में निमित्त बन जाती है। भगवान हमारे कर्म नहीं काटेंगे, कटेंगे हमारे द्वारा, लेकिन हमारी श्रद्धा के द्वारा हमारे कर्म काटने की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैंने भाव भाव में जितने और जैसे दुख पाए हैं तो सब आप जानते हो। मैं अगर उन दुखों को आपसे कहूं या उनका स्मरण करूं तो मुझे और अधिक पीड़ा होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कि उन दुखों का स्मरण करूं तो छाती में बर्फी सी चुभ जाती है। और आप तो सबके स्वामी हो और आप अत्यंत दयालु हो, और मैंने आपकी शरण ली है। अब मेरे बारे में, मेरे दुखों के बारे में आपको जो करना हो तो आप ही मेरे लिए प्रामाणिक हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा पूरी है। ये अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का वादीराज महाराज का मेरे ख्याल से तो ये चरम एक्सट्रीम पर पहुंच गए वो, कि अब इससे ज़्यादा और क्या कहें किसी के सामने। फिर कह रहे हैं और आगे देखें, प्रापद दैवम तबनुति पदैर जीव के नोपदिस्थे। प्रापद दैवम, उसने देवपने को प्राप्त कर लिया था। क्यों कर लिया था? तबनुति पदैर, आपके चरण कमलों में अपनी भक्ति व्यक्त करने वाले मंत्र को सुनकर। किसने सुनाया था? जीव के नोपदिष्टे, जीवंधर कुमार के द्वारा उसने सुना था। समझ में आ गया होगा, अब आगे आ जाएगा। और उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया आपके पंच नमस्कार मंत्र को जीवंधर कुमार से सुन करके। और कैसा था वो? अत्यंत पापाचारी, पूरी जिंदगी जिसने पाप किए, और मरण समय, अकेले मरण समय पर जीवंधर कुमार से आपके नमस्कार मंत्र को जिसने सुना था। कौन था वो? सारमेय अर्थात स्वान, एक कुत्ते ने। सौख्यम प्रापद दैवम, उसने देवों के स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लिया सिर्फ आपके पंच नमस्कार मंत्र को, वो भी दूसरे से सुनकर के, जीवन भर पाप करने के बाद भी अंतिम मरण के समय में इतनी कंडीशन लगा दी, इसके बावजूद भी उसका कल्याण हो गया। कह संदेह हो यदुपलब्धे वासवश्री प्रभुत्वम, तब इसमें क्या संदेह है? अगर कोई जलपन जापैर मणि विरमलई स्वन नमस्कार चक्रम, अगर आपके पंच नमस्कार मंत्र की कोई मणियों की माला पर जाप करे तो उसे स्वर्ग के इंद्रों का वैभव ही क्या, उसे मोक्ष का सुख भी प्राप्त हो जावे, तो उसमें कोई कह संदेह हो यदुपलब्धे, तब उसे अगर स्वर्ग का ही नहीं मोक्ष का भी सुख मिल जाए तो इसमें क्या संदेह है, वो तो अवश्य ही मिल जाएगा। मुझे न स्वर्ग का सुख चाहिए, ना यहाँ पर कल जब राजा आएंगे तो जय जयकार होगी, मुझे वो भी अपनी नहीं चाहिए। मुझे तो ये मालूम है कि आपके पंच नमस्कार मंत्र को मैं निरंतर जपता हूँ तो मेरा तो संसार से कल्याण हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ों से तो मेरा कल्याण अपने आप, इनसे तो बच ही जाऊँगा जब इतनी बड़ी चीज़ मुझे प्राप्त हो जाएगी। कहने का आशय यही है कि जब एक कुत्ते ने मरण के समय दूसरे से नमस्कार मंत्र को सुन करके और अपने जीवन को सुधार लिया, तो फिर मैं तो आपकी भक्ति में, या कि जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति में पंच नमस्कार मंत्र में अपने मन को लगाता है और निरंतर पंच नमस्कार मंत्र करता है, उसके लिए तो कोई भी बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। संसार के बंधन तक को वो तोड़ करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से अपन ने दो पद पढ़े, हिंदी में देखें है तो लगभग वही अर्थ, कोई विशेष वो नहीं है। जन्म जन्म में जैसी जितनी मैंने झेली पीड़ा, याद करूं तो साथी में बरसी सी चुभ जाती है। आप दयालु अतुल कृपालु, आप दयालु अतुल कृपालु, सबसे बढ़कर स्वामी करना हो जो करो हमें तो शरण तुम्हारी, करना हो जो करो हमें तो शरण तुम्हारी। ऐसी भक्ति कर रहे हैं। पापाचारी एक श्वान ने मरण समय में जीवन भर से नाम तुम्हारा मन में धारण करके देवलोक का सुख पाया था। सोच रहा हूँ मणिमुक्ता की निर्मल लेकर माला, जो जगता है नाम तुम्हारा इंद्रों सा वैभव यदि वो पाले, तो इसमें संदेह कहाँ का, कोई संदेह इसमें नहीं है। इस तरह से ये अपन ने दो पद पढ़ लिए। अब अपन आगे, आधा काम हो गया, 24 में से 12 है ना। ऐसे काम करते जाना चाहिए, रोज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा तो हो ही जाता, बूंद बूंद से घट बढ़ जाता है। कल का भी एक प्रश्न शायद बच गया था, मैंने रख तो लिया था। कौन कौन से तीर्थंकरों के, पर ये मुझे, मैं भूल गया तो निकाल नहीं पाया, कौन कौन से तीर्थंकरों की संतान नहीं हुई। तो ये तो तय है कि जिन्होंने विवाह नहीं किया, 5 तीर्थंकरों ने, नहीं ठीक है, उन्होंने प्रश्न तो पूछा, ऐसे घुमा करके पूछ लिया। लोग समझते हैं कि 5 बाल यति हैं, ऐसा पूछेंगे तो जल्दी बता देंगे। तो उन्होंने कहा कौन कौन से तीर्थंकर के यहाँ पर पुत्र इत्यादि संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो 5 तीर्थंकरों की तो हुई नहीं, और बाकी सबने विवाह किया तो सबके संतान की प्राप्ति हुई। बड़ा आत्मा का क्या स्वरूप है, अरस मरूब मगंधम मब्बतम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनिदिठ संतानम उपभोगो जीव लक्षणम। 2 परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने आत्मा के बारे में बताई। अगर हम किसी जीव को पहचानना चाहें तो उपयोग उसका लक्षण है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये जीव आत्मा है। जानने देखने की जिसमें सामर्थ्य वो जीव आत्मा है, लेकिन ये उसका लक्षण है। इससे हम दूसरे, ये हमारी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे अन्य द्रव्यों से। लेकिन नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो कहते हैं अरस, जो किसी रसना इंद्री का विषय नहीं है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना कोई निर्दिष्ट संस्थान है उसका, कोई आकृति भी नहीं है, निराकार है। जान अलिंग गहनम, किसी भी बाह्य चिन्ह के द्वारा जिसे पहचाना नहीं जा सकता, ये ही आत्मा का स्वरूप। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने आत्मा का स्वरूप लिखा हुआ है। और फिर अपन और इससे ज्यादा विचार करना चाहें तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन एक स्वभाव वाला हूँ, संकोचकीन गायक पिंड हूँ, ऐसे जो है 47 प्रकार की जो शक्तियां हैं उन सब में आत्मा के स्वरूप का ही वर्णन किया है। क्या आत्मा हर प्रकार के जीवों में वास करती, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक? भैया इंद्री तो उसकी पहचान का चिन्ह है संसारी जीव की, सो उसी से मालूम पड़ जाता। एक इंद्री होवे तो भी बिना आत्मा के नहीं हो सकत, और 5 इंद्री होवे तो भी बिना आत्मा के तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मालूम पड़ता है कि 1 इंद्री से 5 इंद्री तक सब जीवों में आत्मा वास करती। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज जब हर प्रकार के प्राणी की जनसंख्या बढ़ रही, तो ऐसे में हर जीव के लिए आत्माएं कहां से आती होंगी? बहुत सारी धरी हैं होते, और में से आ जाए। आप तो ऐसा पूछ रहे कि जी इतनी कहां से आ गई, कहूं कोठा उठा में भरी रखी का होते से एक 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 आती जाती। अरे भाई अनंत अनंत जीव आत्मा है, और अनंत संख्या कैसी मानी गई, जिसमें कितना भी जोड़ें कितना भी घटाएं वो कांस्टेंट है, वो अनंत की अनंत रहती है, इसको अनंत अनंत कहते हैं। एक परित अनंत भी है, समाप्त हो जाने वाला युक्त अनंत भी है, लेकिन एक अनंत अनंत है, और जीव राशि को मापा गया है अनंत अनंत, अनंत अनंत जीव राशि है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान बन चुके हैं, और अनंत अनंत सिद्ध बन जावे तब भी संसार में अनंत अनंत जीव राशि ज्यों की त्यों रहेगी, बताइए आप। ऐसा तो अलौकिक इसका गणित है, अपने हिसाब का थोड़ी के 2 में से 2 गए 0 बचो, ऐसा हिसाब नहीं है, ये लौकिक गणित नहीं है। ये अनंत अनंत जो है कांस्टेंट, आज की भाषा में जिसको इन्फिनाइट मानते हैं, इन्फिनाइट माइनस 1 इज इक्वल टू
इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनाइट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें से कितने ही निकाल लो कितने भी घटा लो। तो ये जीव आत्माएं, देखो अपन विचार करो कि ग्राउंड था, बच्चे खेल रहे थे उस पर, प्लेइंग ग्राउंड था, और पानी गिरा, एक दो पानी गिरे और उस ग्राउंड में अंकुर फूट आए और अनंत जीव राशि देखते देखते अपने फैल जाती है, पानी बरसता है, अनंत जीव राशि दिखने लगती है। कहां से आई? अरे इस वातावरण में नहीं दिखने वाले जीव अनंत हैं, उनमें से जो है जब दिखने वाला रूप वो औदारिक शरीर धारण करके दिखने वाला रूप आ जाता है तो दिखाई देने लगते, अन्यथा तो हाथ हिलाओ उसमें कितने सूक्ष्म जीव और पूरे तीनों लोकों में ठसाठस सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। अंधेरे कमरे में और छोटे से छेद से लाइट आती है, वैसे तो डस्ट पार्टिकल एक भी नहीं दिखता, लेकिन उस अंधेरे में कैसे दिखने लगते हैं, कितने सारे कितनी बारीक बारीक कण हैं, उन सबके आश्रित जीव राशि रह सकती है अनंत अनंत जीव राशि, अपन को नहीं दिखाई पड़ती। जब दिखने लायक शरीर बन जाता है तो अपन कहते अरे ये कहां से आ गई, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों की संख्या में होने वाली वृद्धि जब अन्य जीवों की कमी से कई गुनी ज्यादा है। भैया मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण है, गिन सकते हैं, गिनती के लायक है, उससे ज्यादा तो होती नहीं। ढाई द्वीप में मनुष्यों की संख्या और बाकी जीवों की संख्या का तो पार नहीं है। अपन रिलेटिवली देखें, रेशियो देखें तो कितना थोड़ा सा, जब अनंत जीव राशि इतनी पैदा होती तब एकाध मनुष्य की उत्पत्ति होती, इसलिए मनुष्य जीवन तो अभी भी रेयर है और उसकी संख्या हमेशा कम ही रहेगी। ये प्रश्न सबके मन में आता है पर उसका समाधान अपन को करना चाहिए। कोई भी व्रत नियम लेने के बाद अगर किसी कारण से छूट गया तो क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित यही है कि जो नियम लिया है और जिनसे लिया है उनके चरणों में पहले तो अपनी अंदर अंदर निंदा करो और फिर बाद में गुरु की साक्षी, आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करना, गुरु साक्षी पूर्व जिसको अपन कन्फेशन कहते हैं, कन्फेस कर लो अपराध बोध महसूस कर रहे हैं और गुरु के सामने जाकर शुद्ध मन से आलोचना कर दी, गर्हा कर ली कि भगवान मेरे से ये दोष हो गया या कि मेरा ये व्रत छूट ही गया, फिर वे जो भी प्रायश्चित देवे मन की शुद्धि के लिए वो करना चाहिए। प्रायश्चित अपने आप से ग्रहण करने वाली चीज नहीं है, व्रत नियम जिनसे लिया है उन्हीं से, ऐसा कोई फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि इतना इतना अपराध हो जावे तो इतना प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, एक चींटी मर जावे तो दो माला फेर लेना, तीन फेर लेना, हो गया काम, तो दो चार मारो 12 माला फेर लो, ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता, वो तो निवेदन करना पड़ेगा। जब आपके अंतरंग में ऐसा लगे कि मेरे से अपराध हुआ है तो आधा दोष तो उसी में दूर हो गया, कहते हैं कि प्रायश्चित आधा तो निवेदन करने में ही हो गया, फिर उसके बाद मन समझाने के लिए हो सकता वो कह दें कि एक माला फेर लो, दो माला फेर लो, के एक आसन कर लो, ऐसा कह देंगे तो मन और प्रसन्न हो जाएगा। मन की प्रसन्नता के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, कोई कछु कोई के लाने पनिशमेंट नहीं है ये प्रायश्चित, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए प्रायश्चित नहीं लिया जाता। प्रायश्चित तो मन की विशुद्धता, जिससे चित्त की शुद्धि हो जावे, ऐसा अनुष्ठान कर लेने का नाम प्रायश्चित कहलाता। तो कोई अगर व्रत नियम अपन ने लिया और कारणवश छूट गया या उसमें कमी आ गई तो निवेदन कर देना चाहिए और जो भी उसका योग प्रायश्चित होगा वो दे देंगे। जो व्रत उपवास करते रहते उन्हें व्रत में, उन्हें व्रत से भी कर सकते, जो व्रत उपवास करके करते हैं उन्हें व्रत से भी कर सकते, मतलब एक आसना से कर सकते, अपनी शक्ति के अनुसार कर लेना चाहिए, उसमें क्या, ऐसा थोड़ी है कि उपवास से ही करेंगे तभी व्रत होगा, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम एक आसना से कर लेंगे, कल के दिन हमारी सामर्थ्य आ जाएगी फिर हम उपवास से भी एक बार कर लेंगे, उसमें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खें तो हलवा खें नहीं तो भूखे रहें, रोटी खा लो चुपचाप हलवा ही खाएंगे, ऐसा थोड़ी है, रोटी खा लो फिर अभी फिर बाद में जब हलवा बनेगा जब खा लेना, भूखे रहने से क्या फायदा, तो कुछ तो करना चाहिए। हाँ नहीं तो करेंगे तो बिल्कुल एकदम हाई फाई, वैसा नहीं। आज मैंने सुबह एक पुस्तक में पढ़ा कि कोई मुनि महाराज आहारचर्या के, ये कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया पता नहीं भाई, मतलब उपवास इत्यादि करने में भी आत्मघात का दोष लगता है, ये सही है कि नहीं? भैया उपवास में आत्मघात का दोष लगता है ऐसा तो हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। इतना अवश्य है कि अगर उपवास संक्लेश पूर्वक किया जाएगा ऐसा होगा, विवक्षा समझो, देखो जल्दी से आकुलता न करो करे, एकदम प्रश्न सुनते ही साथ अपना मन कैसा आकुल विकल सा हो जाता, जबकि धर्म ध्यान करवे बैठी उसने प्रश्न पूछा होगा तो अपन को प्राय प्रश्न सहा प्रभु पर मनोहारी परा निंदया। हाँ, प्रश्न को सहन करना सीखो, उत्तर देना बाद में सीखो, पहले प्रश्न सहन करो। उसने क्यों पूछा, क्या कहां देखा होगा, कहां पढ़ा होगा, उसका क्या समाधान है। तो देखो, जब अपन अपने अंदर भी अपने आश्रित बहुत सारी जीव राशि अपना जीवन यापन करती है, अनंत निगोडिया जीव अपने शरीर के आश्रित अपना जीवन चलाते हैं, अपन जो है अगर आहार इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं तो उन जीवों को बाधा तो पहुंचती है। अगर हमारा बाधा पहुंचाने का भाव होवे तो फिर वो दोष का कारण है, लेकिन हम अपने तपस्या कर रहे हैं, हम अपने आत्म सुख के लिए और शांति पूर्वक समता पूर्वक अगर उपवास इत्यादि करते हैं तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। इसी तरह केश लुंचन की क्रिया करने पर भी कदाचित जीवों का विघात संभव है, लेकिन हमारे परिणाम चूंकि संक्लेशित नहीं है, हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वह दोष हमें नहीं लगेगा। आपने जो प्रश्न किया वो इसी दृष्टि से कहीं लिखा होगा कि कोई उपवास इत्यादि करे, किस दृष्टि से करे, कि जिसमें मेरे अंदर के सब जीव मर जावे और हम स्वयं भी धीरे धीरे उपवास करके, हमें जीना ही नहीं है, मर जाएंगे, सुखे भी कहो जे को उपवास करे थे और अच्छो रहो। तो ऐसे जीवन से निराश होकर के और उपवास करने वाले ने तो फिर आत्मघात ही किया, आप उसको क्या कहेंगे। 10-25-50 के उपवास कर लिए आपने तो प्राणी निकल जाएंगे, तो अपनी शक्ति से अधिक करेंगे तो फिर वो उसका कारण बन जाएगा। इस अपेक्षा से जो है किसी ने कहीं लिख दिया होगा, आपने प्रश्न तो पूछा। वाह, होशियार, देखो आप होशियारी का ढंग। 8 तारीख को मेरा जन्मदिन है, देखना आप, तो मैं किस ढंग से मनाऊं कृपया बता दीजिएगा। हमने अब देखो होशियार है सब, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं सब लोग होशियारी इनडायरेक्ट है। देखो, जन्मदिन अपन को कैसे मनाना, हमने एक बार और कहा था, अपन को भारतीय संस्कृति से मनाना, पाश्चात्य संस्कृति से नहीं मनाना। पाश्चात्य सभ्यता कहो, संस्कृति तो है नहीं, पाश्चात्य सभ्यता है। संस्कृति भारतीय संस्कृति में यह है कि हम अपने जीवन को निरंतर रोशन बनाएं, हम अपने जीवन में रोशनी करें और हमारे आसपास के जीवन में भी रोशनी हो, इसलिए हम लोग मोमबत्ती बुझाते नहीं हैं, दीप जलाते हैं। हाँ, और हम किसी के जीवन को काटते पीटते तकलीफ नहीं पहुंचाते, हम तो बनाते हैं। इसलिए ये जो केक और वो भी काटना शब्द, ये अपने यहाँ पर नहीं है। अपन तो अगर अलग अलग हों तो जोड़ने का काम करेंगे अपने जीवन में, इसलिए ये दोनों चीज़ें ना करके और अपने जीवन में उस दिन कोई ना कोई व्रत इत्यादि छोटा सा 9 बार नमोकार भी जीवन भर पढ़ने का नियम ले लिया कि रोज 9 बार नमोकार पढ़ेंगे, और नहीं है जीवन भर का तो साल भर का, अगले साल तक जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं रोज याद करके अलग से 9 बार नमोकार पढ़ूंगा। इतना छोटा सा भी नियम ले लिया तो फिर वो दिन कौन सा हो गया, व्रतों का दिन हो गया। वो फिर श्रद्धा के साथ आपने व्रत लिया है तो वो आपके एक तरह से व्रतों की तिथि हो गई, जन्म तिथि नहीं। जन्म तो सबका यहाँ मिथ्यात के साथ होता है, तो मिथ्यात की क्या जन्म जयंती मनाना, मनाना हो तो व्रतों की और रत्नत्रय की सम्यक दर्शन की जयंती मनाना चाहिए, आचार्य महाराज का ऐसा कहना। तो अपन जो है चाहें तो अपने उस जन्मदिन को भी व्रत और संयम का दिन बना सकते हैं। ठाट बाट से पूजा करो, मुनिराज अगर आसपास हैं तो उनके लिए आहार इत्यादि दो, और जो है दिन भर इसी तरह से अपना व्यतीत करो कि मेरा जीवन इतना व्यतीत हो गया, जो शेष रहा है उसमें मैं कुछ अच्छा काम करूं। अपने हाथ से उस दिन कोई ना कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं, ऐसे मनाना चाहिए आनंद पूर्वक। अकेले जो है अच्छे कपड़ा पहन लो, अच्छो अच्छो भोजन कर लो, इसमें क्या होना है, ये तो सब कोई कर लेते हैं, उसमें क्या। ट्रेन में भोजन करने में दोष तो नहीं लगता, ट्रेन में भोजन नहीं करेंगे तो क्या भूखे रहेंगे क्या। देखो, जितनी शुद्धि है उतना ही होएगी, उससे ज़्यादा नहीं। त्यागी व्रती होएगा तो नहीं करेगा, सामान्य गृहस्थ होएगा तो वो तो करेगा। त्यागी व्रती के लिए पूछ रहे हो अगर कि ट्रेन में भोजन करेगा, नहीं, त्यागी व्रती नहीं करेगा। ट्रेन में भोजन उतर करके और नीचे
और नहा धो करके दर्शन करके करेगा। पोहा भक्त है कि अभक्त है, इसे जैन परिवारों में बनाया जाना चाहिए कि नहीं? पोहा है, ये पोहा लिखा पोहा, जो भी आपकी भाषा में जो भी कहते हो, पर एक एक सही शब्द उसका पोहा भी है और दूसरी भाषा में भी आप जो कहते हो समझ सब गए। चावल को ऐसे चिपका करके बनाया जाता, वो वही है वो। उसके बनने की प्रक्रिया देख लोगे तो फिर बाद में न खाओगे। हाँ, वो इधर खूब देखने में मिल सकता, छत्तीसगढ़ में चले जाओ रायपुर साइड में, वहां पर सैकड़ों पोहा बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उनमें सीधे वायलर लगे रहते हैं, वायलर जिनमें की वायल होते हैं, 10-10, 20-20, 25 बोरों को एक साथ जो धान है जिसको ना सोधा बीना जाता, ना कितनी लतें हैं कितने कीड़े हैं कोई मतलब नहीं, सीधे जाता है वो, ऊपर बोरा खुलता है और उसमें से पूरा बॉयलर में गर्म खोलते हुए 80 डिग्री पर जो वाटर है उसमें वो डाल दिया जाता है और उसका टाइम फिक्स है कि इतने टाइम तक वो वाइल होगा और वाइल होने के बाद फिर प्रोसीजर होता है और सीधे जाकर मशीन में हॉट जो गर्म रहती है उसमें ऐसे चिपक करके और बाहर निकलता है तो छिलका अलग हो जाता, पोहा अलग हो जाता, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, थोड़ा गीला रहता एक तरह से। अब बासा भात है, भात कई दिन का एक तो हाँ भात और उसको जो है ऐसे चिपटा करके, अब लेकिन क्या करें, इस जिब्भा की मारें तो सब परेशान कोई की नहीं चली इसकी मारे। ये कहती है कि ये कुछ नहीं कहता, पेट पेट तो कहता कि भर गए सो शांति है तुम तो डाल दो, लेकिन ये कहती कि ऐसे कैसे, जो जो अच्छा है टेस्टी है वही डालो, ऐसे कैसे डाल सकते, तो वो यहाँ पर बिल्कुल बैठी रहती हमेशा और अपन को समझा बुझा करके राजी कर लेती हो। अपना मन नहीं भी करे तब भी ये जिब्भा राजी कर लेती और अपन खा लेते सब जानते बूझते हुए भी। इसलिए अब आपको जैसा करना हो इतना जरूर है कि जब तक मालूम न हो तो कम जूस लगता, मालूम हो जाए फिर खाओ तो ज्यादा जूस हम नहीं जानते आप, अब आप जानो आपका काम आप ही ने अपने हाथ से अपना उपद्रव किया मैं रात्रि भोजन नहीं करता पर कभी कभी जो है लेट हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति में दूध फल मूंगफली वगैरह लेता हूँ, तो ये अन्न के बराबर दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अन्न अलग चीज है और टेम्परेरी कभी जो है इस तरह की स्थिति बन जाए और उसमें अपन ने अपनी आकुलता से बचने के लिए कोई चीज ले ली है और वो अन्न की नहीं है, उसमें कमती दोष है। देखो भैया, अपने यहाँ पर आरंभ को ज्यादा दोषयुक्त माना, दाल रोटी सब्जी बनाने में और इन सब में ज्यादा आरंभ करना पड़ता और जरा सा भूख लगी अब क्या करें, रात भर कटेगी नहीं, एक ग्लास दूध उठाओ जल्दी से 5 मिनट में पी करके और निश्चिंत हो गए, पानी पी लिया, भैया बस इतने मूंगफली रखी थी खाली, हो गया काम चल जाएगा कल तक के लिए, क्योंकि शाम को भोजन नहीं कर पाए। अब रात भर थोड़ी ऐसी निकलेगी, संकलेश पूर्वक निकलेंगे निकालेंगे क्या? हाँ, अगर सहन शक्ति है तो सहन करो, ऐसा भी नहीं कि आपको ये कह रहे कि खाना चाहिए नहीं, अगर सहन शक्ति है तो बहुत अच्छा है, सहन कर लो दूसरे दिन के लिए, कौन मर जाओगे, ऐसा विचार करके सहन कर लो। और अगर नहीं सहन होती, संकलेश होता है, तो थोड़ा बहुत इस तरह से काम चलाने के लिए कभी कभार ले लेते हैं, तो इसमें कोई अन्न से तो कम ही दोष है। थाली लगा करके 12 बजे रात को और खाने वालों की अपेक्षा तो अच्छा ही है, जहां पर मंदिर आदि नहीं होते वहां पर जाने का अवसर आ जाए तो ऐसी स्थिति में भोजन ग्रहण करें या नहीं? देखो, ऐसी स्थिति में एक तो वहां जाना नहीं चाहिए और अगर जाना भी पड़े तो फिर कोई चीज का त्याग वगैरह करके, नमोकार की जाप करके और रस का त्याग कर दिया या कोई भी चीज भोजन में से कि आज मुझे दर्शन नहीं मिले हैं, इस तरह मन को कर सकते हैं। हम प्रतिदिन चाय पीते हैं, पीते थे, लेकिन जब से सुना कि उसमें मांस आदि का उपयोग करने से तैयार होती तो उसी दिन से त्याग कर दिया, लेकिन कुछ दिनों से हमने काफी पीना शुरू की है, उसमें दोष तो नहीं है? काफी में जो है वो और कोई दोष तो नहीं है, जो काफी की प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, अभी उसमें कहीं कोई और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए या टेस्ट के लिए कुछ मिलाया जा रहा हो ऐसा तो नहीं सुनने में आया? कलर, फ्लेवर और टेस्ट इन दोनों के लिए जो है वो चाय में तो मिलाया जाता है, ये जो है लोगों ने कंफर्म किया। और एमपी में तो जो है बहुत तेजी से 80% उनकी चाय की बिक्री ही बंद हो गई थी जब चाय के बारे मालूम पड़ा तो।
पर काफी में ऐसा कुछ नहीं, पर काफी में इतना जरूर है कि वो हार्मफुल है अपने शरीर के लिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ता है, हर डिजीज जिनको है उनको संभल के पीना चाहिए। उसका सीधा बीज आता है वो तो और ज़्यादा, उसको तो प्रोसेस करके ये नेस्कैफे वाले बना करके पाउडर फॉर्म में देते हैं, तो वो उतना हार्मफुल नहीं, पर 1.5% उसमें जो है कैफीन होती है, वो एक तरह का नशीला पदार्थ है। 0.75% होती है चाय में, एक प्याली चाय में, और 1.5 जस्ट डबल जो है वो काफ़ी में होती है। तो हफ्ते में एक आध बार कोई एज ए मेडिसन, वो कुछ चीज़ों में एज ए मेडिसन भी
उपयोग में आती है। तो एज ए मेडिसन ये दोनों चीज़ें एज ए मेडिसन थी, जो इसकी लीफ जो है चाय की लीफ, ये ठंडे प्रदेशों में जैसे अपने बच्चों को सर्दी हो जाती तो ब्रांडी पिला देते हैं एक चम्मच गर्मी के लिए, वैसे ही जो है इसका काढ़ा बना करके लीफ का और उसके कोको के बीज का, और ये काढ़ा बना के पिलाया जाता था एक चम्मच दवाई की तरह, जैसे काढ़ा पिलाते हैं दवाई में, पर वो बन गया पेय पदार्थ। तो उसको अपन जो है इतनी इतनी मात्रा में और गिलास भर भर के जो है चाय पीते हैं लोग, पता नहीं। तो इससे बचिएगा, अगर कभी कभार उपयोग करें तो अलग बात है, पर लगातार करेंगे तो आपके लिए तकलीफदायक होगी। जैन धर्म में अष्टमी चौदस का महत्व क्या है? अन्य तिथियों की अपेक्षा इनको क्यों महत्व माना गया है? क्यों कही गई है व्रत त्याग की? इसका क्या लॉजिक है? ये मैंने बताया था एक दो बार, पर आप शायद उस समय नहीं आए होंगे। अपने यहाँ पर अष्टमी को 8 कर्मों के नाश करने के लिए, ये घड़ी सुबह भी 10 मिनट आगे थी, 6 बजे, इसमें 6:10 हो गया। तो मैं कह रहा था कि अष्टमी 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए, 14 गुण स्थान पाने के लिए चतुर्दशी, ऐसा लिखा है, और ये शाश्वत पर्व है। इसके पीछे अगर थोड़ा बहुत अपन साइंस देखना चाहें तो दिखता भी है कि जो भी सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्रमा के होते हैं वो पानी पर होते हैं, और हमारे अपने शरीर में 72% वाटर तो ऑलरेडी है, हम एक्स्ट्रा पानी और पिए और हरी सब्जियां खाएं तो और ज्यादा पानी हमारे भीतर आ गया, वैसे ही नॉर्मल कोर्स में भी पानी है, उस पर चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ता होगा। अष्टमी चतुर्दशी दोनों चंद्रमा से ही बनती हैं, चंद्रमा की कलाएं खुलती जाती हैं तो पूर्णिमा आती है, बंद होती जाती तो अमावस्या आती है, उसके एक दिन पहले चतुर्दशी आती। तो अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, या तो एक्साइटमेंट होगा या कि डिप्रेशन होगा, दोनों चीजें। उसके पहले चतुर्दशी के दिन और व्रत नियम संयम रख लिए ताकि आने वाले दिन के इफेक्ट हमारे ऊपर कम हो जाए, शायद ये कारण रहा हो। मैं अपने मन से कह रहा हूं, कहीं पर शास्त्र में नहीं लिखा है, नहीं तो आप कहें कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है, आपको अच्छा लगे तो एक एक लॉजिक है ये। और दूसरा जो है, 7 दिन निकल गए हैं, 7 और बाकी हैं, बीच का दिन है, तो देखो चंद्रमा के असर कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, ज्यादा एक्साइट भी नहीं है, ज्यादा डिप्रेशन भी नहीं है, तो दोनों स्थितियों में एक समान स्थिति होगी, तो उस दिन हम आसानी से धर्म कर सकते हैं। तो हमने अष्टमी का दिन शायद आचार्यों ने चुना हो, इस तरह अष्टमी चतुर्दशी दोनों शाश्वत पर्व हैं। हमारे मुनि और आचार्यों के नाम के साथ सागर क्यों लिखा जाता है? पहले नहीं लिखा जाता था, कुंद कुंद स्वामी, समंतवद्र आचार्य, अकलंक देव, पुष्पद भूतबली आचार्य, इनमें नहीं लिखा जाता था। नंदी परंपरा चली, सेन परंपरा चली, जयसेन स्वामी, जिनसेन आचार्य, इस तरह से फिर बात बात को आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में सागर शब्द जोड़ना शुरू हुआ, तो आज भी सभी साधुओं के साथ सागर शब्द जोड़ा जाता है। जिनके साथ सागर शब्द नहीं जोड़ा जाता उनमें कोई विशेषता नहीं है ऐसा नहीं, और जिनके साथ जोड़ा जाता उन्हीं में विशेषता है ऐसा भी नहीं। एक साधु में सागर के समान विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं। समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके भीतर कचरा डाल दो कितने ही, वो विद इन मूवमेंट अपनी लहरों से उसे उठा करके किनारे पर फेंक देगा। ये सबसे बड़ी समुद्र की, कोई और तालाब नदी की ये विशेषता नहीं, सिर्फ समुद्र की विशेषता है, कितने ही कचरा फेंक दो वो तुरंत झटक करके 5 मिनट के अंदर लहरों में बाहर डाल देगा। ठीक इसी तरह साधु के जीवन में पूर्व में बांधे गए कर्मों के उदय में और राग द्वेष परिणाम हो भी जाए अगर, तो वो अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर उनको हटा करके चित्त को पुनः निर्मल कर लेता है। यही विशेषता साधु में, जैसे कि सागर का पार नहीं पा सकते उसकी थाह नहीं ले सकते, ऐसे ही साधु के जीवन में जो गुणवत्ता आती है उसकी थाह और उसका पार कोई नहीं पा सकता है, ये दूसरी विशेषता। सागर में कितनी नदियां जाकर के मिल जाए लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। साधु के जीवन में कितने ही निंदा और प्रशंसा मिले लेकिन वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा में अर्थात अपने समता परिमाण बनाए रखता है, इसलिए सागर के समान उसकी विशेषता है। समुद्र में जैसे रत्नाकर कहा जाता है, रत्न पाए जाते हैं, इसी तरह एक साधु के जीवन में भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 रत्न और भी विशेष गुण जो है पाए जाते, इसलिए उस समान ही है। और समुद्र की एक विशेषता कह लो, चाहे खोट कह लो, उसके पास जाकर के किसी की प्यास बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। इसी तरह साधु के चरणों में जाने पर मोक्ष मार्ग की प्यास बुझती नहीं है और ज्यादा बढ़ जाती कि मैं भी इनके जैसा कुछ थोड़ा बहुत तो करूं, ऐसा मन में लगन लग जाती। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जो सागर में विशेषताएं हैं वो साधु के अंदर मिलती हैं, इसलिए लगाते। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि जिनके साथ सागर शब्द नहीं मिला उनमें भी वे विशेषताएं पाई जाती हैं, और जिनके साथ लगा हुआ उनमें भी वे विशेषताएं होनी चाहिए। 48 में काव्य की दूसरी पंक्ति में भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, भक्त्या मया विविध वर्ण रुचित विचित्र पुष्पाम, इनमें कौन सा सही है? दोनों सही है भाई, रुचिर भी और विविध भी, अर्थ दोनों के एक ही हैं, दोनों पाठ जो है मिलते हैं। रुचिर वर्ण मतलब विविध वर्ण, नाना प्रकार अनेक, रुचिर का मतलब भी अनेक है और विविध का अर्थ भी अनेक ही है। मैनी विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह क्या क्या हैं? विद्यमान 20 तीर्थंकर के चिन्ह तो मुझे एक कहीं पर मिले थे, पर मेरे पास जो आर्टिकल्स हैं उनमें वो अभी नहीं मिल रहे हैं। किसी ने और मेरे से कहा था वहाँ पर जब मैं जनकपुरी में था, मैं इसको मुझे मैंने कहीं देखे तो हैं तीर्थंकरों के, विद्यमान जो 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के उनके नाम और उनके चिन्ह मिल गए थे। कुछ चिन्ह नहीं मिलते हैं, बाकी 20 में 17-18 चिन्ह मिल गए हैं। किसी ने खोज करके वो लेख लिखा था, वो मिल जाएगा तो बता पाऊंगा, वैसे तो नहीं मालूम। नवदा भक्ति से क्या तात्पर्य है? 9 प्रकार की जिसमें प्रक्रिया की जाती वो नवदा भक्ति है। प्रतिग्रहण, मुनि महाराज को आते देख करके और सबसे पहले भो स्वामिन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और उनको बहुत निकट से ग्रहण करना, ये पहली भक्ति है। फिर उनको उच्चासन देना, ये दूसरी भक्ति है। उनका पाद प्रक्षाल करके माथे पर गंधोदक लगाना, ये तीसरी भक्ति है। और फिर उनकी पूजन करना, ये चौथी भक्ति है। मन शुद्धि 5वीं, वचन शुद्धि 6वीं, काय शुद्धि 9वीं, आहार जल गलत हो गया 8वीं, 7वीं होना चाहिए है ना, 4 मन वचन काय की शुद्धि, ये 3 और जोड़ लो, 4 और 3 7, और फिर बाद में आहार जल शुद्ध है, ये 8 और नमोस्तु स्वामिन, ये हो गई नवदा भक्ति। इतना ही होना आवश्यक। जो चौके में हैं उनको पूरी नवदा भक्ति करना चाहिए, जो बाहर से आते हैं उनके लिए 5 प्रकार की भक्ति है, मन वचन काय की और आहार की शुद्धि और नमोस्तु, इतना ही है, इसी को नवदा भक्ति कहते हैं। और करें क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये और ये वाले, इसमें तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, इन कॉन्टेक्स्ट टू द आई डोनेशन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, हाउ मच इट इज करेक्ट दैट आफ्टर डोनेशन आईज द पर्सन वुड वो एज ए ब्लाइंड इन द नेक्स्ट बर्थ, शुड आई डोनेशन बी अप्रिशिएटेड प्लीज कमेंट। इन्होंने ये जानना चाहा है, किसी ने इनको ये कह दिया होगा कि अगर आप अपने मरण के समय आई डोनेशन कर देंगे, अगर किसी को आंख दे देंगे तो आपको अगले जीवन में आंख नहीं मिलेगी, ऐसा किसी ने इनसे कह दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है और इसके बारे में आपका क्या वो है। तो आचार्य महाराज से जब भी इसके बारे में पूछा जाता है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये करुणा दान है और इस करुणा दान का निषेध आचार्यों ने किया नहीं है, इससे पुण्य का ही बंध होता है। ये चूंकि परमार्थ का दान नहीं है इसलिए कर्मों की निद्रा तो नहीं होती, पर पुण्य का अर्जन होता है। और ये जो भ्रांति है कि हमने अपने आईज दूसरे को दे दिए मरण के समय तो हम अगले जन्म में ब्लाइंड होंगे या कि अंधे होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा अवश्य है कि अगर दूसरे की आंख फोड़ने की भावना हो या अपने तो जरूर जो है अपने को अगले जीवन में अंधापन मिलेगा। अपन तो दूसरे की फूटी आंख को और दोष कर रहे हैं तो काय को उसके लिए अपने को अंधापन मिलेगा, इसलिए ये तो भ्रांति मन से निकाल देनी चाहिए। आज बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत मन बना के लोगों ने लिखे होंगे और मैं उनका जवाब दे नहीं पाया क्योंकि समय पूरा हो गया। ये सब रख लेते हैं फिर अपन कल देखेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, दीन दुखी जीवों पर मेरे और
सरल सत्य व्यवहार करूं बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं बने जहां तक
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।